तो लिहाजा एक होता है विरासती ईमान, विरसे में मिला मुझे आपको, इनहेरिटेड बिलीफ, और एक होता है शौरी ईमान, शौर के साथ। इसका फर्क देखते हैं, इस तो पूरे हिस्से कोई हाईलाइट कर ले बेशक। ईमान सुनी सुनाई चीज का नाम नहीं, ईमान विरासत मिली हुई चीज का नाम नहीं। विरासत में मकान, दुकान, प्लॉट मिल जाएगा, जमीन, पैसे मिल जाएंगे, मगर विरासत में ईमान नहीं मिलेगा। ईमान खुद कमाना पड़ता है। इमाम गजाली रहमहुल्ला ने अहया उलूमुद्दीन में तौबा के बाब में सबसे पहले इस ईमान से तौबा कराई है जो विरसे में मिल रहा है, जो विरसे में पाया गया। इसको लिखें जरा कि अल्लाह हम तुझसे पनाह मांगते हैं या तेरी पनाह में आते हैं ऐसे ईमान से जो विरसे में मिला हुआ है, इनहेरिटेड बिलीफ से तेरी पनाह में आते हैं। फरमाते हैं जो तुम्हारे माँ बाप का ईमान है वो तुम्हारा नहीं है। आज आप भी खुद को ये कह दें, तुम्हारा ईमान वो होगा जिसमें तुम खुद गौर व फिक्र करोगे, जिस पर तुम खुद बैठकर सोचो विचार करोगे। हम लोग इत्तफाकिया मुस्लिम यानी मुस्लिम बाय चांस हैं, ना भी चांस कहें तो बस अल्लाह की तरफ से एक हो गया हमारा नसीब कि हम मुसलमान हैं। ये इत्तफाक ही तो है कि हम एक मुसलमान के घर में पैदा हो गए, लेकिन असल मोमिन वो होता है जो अपनी मर्जी से मुसलमान हुआ हो, इत्तफाकिया नहीं, यानी मुस्लिम बाय चॉइस नॉट बाय चांस। इस एतबार से देखा जाए तो अल्लाह ताला ने ईमान की बुनियाद जिस चीज़ को करार दिया है वो विरासत नहीं, वो मुस्लिम सोसाइटी नहीं है। कि एक शख्स मुस्लिम सोसाइटी में रहता है तो वो मुसलमान होगा, एक शख्स मोमिनों के गिरोह में रहता है तो वो हर हाल में ही मोमिन होगा, यानी ये मुमकिन ही नहीं है। तो फिर क्या है रियलिटी? अगली लाइन को हाईलाइट कीजिएगा। ईमान की बुनियाद जिस चीज को करार दिया है वो इल्म और फिक्र है। ये है असल में खुलासा। अच्छा, इल्म हो और फिक्र ना हो, फिक्र समझते हैं, शऊर। आज इल्म तो दिया जा रहा है काफी जगह, शऊर कम दिया जा रहा है। वक्त के तकाजों को कैसे समझना है वो नहीं पता। तो लिहाजा इल्म और फिक्र वो चीजें हैं जिससे ईमान का पौधा फलता फूलता है। एक जगह नहीं, बेशुमार जगहों पर इल्म को ईमान की बुनियाद करार दिया, यानी कुरान पाक में कई जगहों पर इल्म को ईमान की बुनियाद करार दिया गया। मसलन सूरत आल इमरान आयत 7 में भी ये बात आती है। इसी तरह वल्लज़ीना उतुल इल्म वल ईमान, वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया और इल्म के नतीजे में इनको ईमान दिया गया, उनके लिए क्या फरमाया? वर रासिखून फिल इल्म यकूलून आमन्ना बिह। वो लोग जो इल्म में रासिख होते हैं यानी मजबूत इल्म हासिल करते हैं, साउंड नॉलेज हासिल करते हैं, वो यूं कहते हैं हम इस पर ईमान ले आए। तो पता क्या चला कि ईमान इल्म रसूख का नाम है। लिख रही है, बहुत नया जुमला आपके लिए। ईमान क्या है? इल्म पुख्तगी का नाम। जितना पुख्ता इल्म उतना ईमान पुख्ता। देखिए, मैं आपको यहां थोड़ा सा समझा के आगे जाना चाहूंगी। ईमान जब नया नया आता है ना, बड़ा कमजोर होता है, नई कॉम्पल की तरह। जोश बड़ा होता है, मजबूती कोई नहीं होती। नया पौधा देखें, जब उगता है तो हवा से इधर लहराता है, इधर लहराता है, हल्का ग्रीन कलर होता है पत्तों का, बहुत चमकता चमकता है। इसके मुकाबले में एक दरख्त देखिए, सोबर, डिसेंट, बहुत फुर्तीला ना भी होगा तो जमा हुआ। शुरू में ईमान एक कॉम्पल की तरह होता है, नई नहीं होती, जोश होता है लेकिन अंदर होश कोई नहीं होता। आप किसी को भी नया नया ईमान या इस्लाम या कुरान डिस्कवर करता देखें ना, उसका दिल करेगा सारी दुनिया को सुना दूं, सारी दुनिया तक पहुंच जाऊं। फिर वक्त के साथ साथ इल्म का पानी मिलता जाएगा तो वो छोटी सी शाख मजबूत तने में बदलेगी। पहले आप किसी चीज को जानते हैं, फिर इसे समझते हैं, फिर इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, फिर इस पर गौर व फिक्र करते हैं। चार स्टेप्स हैं, इसके अंदर एरो लगा लें। फर्स्ट थिंग टू नो, नॉलेज जो है ना वो नो है ओनली। बहुत सारे इसी पे रुक जाते हैं, इंफॉर्मेशन मिल गई, दैट्स इट, ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंफॉर्मेशन दे दी, खत्म। नहीं, फर्स्ट थिंग टू नो, सेकंड समझना, टू अंडरस्टैंड, और टू अंडरस्टैंड के बाद समझने की कोशिश, स्ट्रगलिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये थर्ड स्टेप हुआ। और फोर्थ फिर क्या है? गौर व फिक्र, डीप इन्वॉल्वमेंट, ऑब्जर्वेशन, फिकर, अंडरस्टैंडिंग। ये बात समझ आ गई, लेकिन ये समझ नहीं आई, इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बात समझ में आने लगती है। जब बात खुलकर समझ में आ जाती है, दिल में बैठ जाती है, तो आप कायल यानी कन्विंस हो जाते हैं। ये ईमान कहलाता है। तो चार मरहलों में ईमान की ग्रोथ है। आगे हम इंशाल्लाह ईमान के दर्जे पढ़ेंगे कल, अल्लाह ने चाहा तो। अभी क्या समझ आए? टू नो। बस दफा टू नो के दर्जे पे लोग कहते हैं आलिम बन गए, माशाल्लाह बहुत समझ आ गई। और मैं अक्सर कहती हूँ कि दौरे कुरान जो है ना, वो टू नो है ओनली। फिर आप समझते हैं, फिर समझने की कोशिश, फिर गौर व फिक्र, यानी दौरे कुरान, फिर सुबीलुल जन्नास, फीलुल जन्नास से आप नूरुला नूर, और उसके बाद सारी जिंदगी कोर्सेज करते रहें, आप इतना खूबसूरत ईमान का मास्टरपीस बन जाएंगे कि कोई वक्त की आंधी आपकी चमक को कम नहीं कर सकेगी। शर्त एक है, ईमान को देने वाली चीज इल्म के साथ जुड़े रहें। आप खुद अपने आप को नहीं पहचानते कुछ दिन के बाद, बिलीव मी, अगर आप इस ईमान प्रोड्यूसिंग सोर्स से अपने को डिस्कनेक्ट करें। वापस वही रंग आने लगता है, वापस वही सोचें, वही रंग रूप, दिल उधर उधर ही जाने लगता है। एकदम नहीं आता, आता है थोड़ा थोड़ा, और इंसान पूरे का पूरा बदल जाता है, अपसाइड डाउन होती है। ये ईमान की मौत है। और फिर बुरा भी ना लगे, फिर गम भी ना हो, फिर दुख भी ना हो। वो चीज जिसका हमें इल्म ना हो, जिसे हमने समझा ही नहीं, इस पर तो ईमान नहीं आ सकता। हमारा आलम तो यह है कि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि बेटे को अमेरिका भेजा, पता चला हफ्ते 10 दिन के अंदर बेटे शराब पीने लग गए, खिंजीर का गोश्त खाने लगे, सारा ईमान खत्म हो गया। फुला मुल्क तो बड़ी गंदी जगह है, वहां पर तो जो भी जाता है उसका ईमान खत्म हो जाता है। देखिए ईमान था ही कहाँ जो खत्म हो गया। ईमान एक मरतबा जाए तो वो खत्म नहीं हुआ करता, ये हाईलाइट कर ले। कम हो जाता है, ज्यादा होता है, खत्म नहीं होता। कुरान पाक में एक कौम के ईमान लाने की बात है, जिनको जलते हुए अलाव के घड़ों में डाल दिया, पूरी कौम उसमें चली गई। जैसे मैं सूरह बुरूज की आयत नंबर 8 है, जिस कौम को वक्त के बादशाह ने आग के घड़ों में डालना चाहता, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमा नकमू मिनहुम इल्ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। इन लोगों को सिर्फ इस बात पर सजा दी गई कि वो अल्लाह जबरदस्त और लायक सताइश हस्ती पर ईमान ले आए थे। यानी हर दौर में मुसलमान का जुर्म बस एक ही है, कहीं युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, वो एक अल्लाह पर ईमान लाता है, उसी के गुण गाता है, उसी की बड़ाई को मानता है। सूरत बुरूज में पूरी कौम का किस्सा है, इन्होंने जान कुर्बान कर डाली क्योंकि ईमान मौजूद था। एक मरतबा आप कायल हो गए, एक मरतबा आपके दिल में बात उतर गई, अब ये कहाँ जाएगी? अब इसे ईमान कहा जाता है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देता है। इसलिए कि ये ईमान है जिसकी बुनियाद इल्म है, जिसकी बुनियाद तहकीक, तफक्कुर और तदब्बुर है, आपका शौरी अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर गौर फरमाएं, आपने फरमाया, पढ़िएगा, मम माता वहुव यालमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। जो शख्स मर गया, यहां पर आपने यूमिन नहीं कहा कि इस बात पर ईमान रखता है, नहीं, बल्कि फरमाया जो मर गया और इस बात का इल्म रखता है कि अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, दखल अल जन्ना यानी जन्नत में दाखिल हुआ। क्या पता चला? पता ये चला कि यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से मुराद इसकी मारफत और इसका शऊर था। खाली जानने से क्या होता है, वो तो कुफार को भी पता है कि मुसलमान ये कलमा पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? एक आलम दीन कहते हैं, अल्लाह इस शख्स का भला ना करे जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह की इतनी मारफत भी ना हो जितनी अबू जाहल को थी। अबू जाहल को ला इलाहा इल्लल्लाह की मारफत थी, इसीलिए वो पागल भाग गया। अबू लहब को ला इलाहा इल्लल्लाह की कुछ ना कुछ समझ थी, इसीलिए भाग गया कि मुझसे ये काम नहीं होगा। एक बहुत बड़े प्राइवेट बैंक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बड़ा जलसा मुनक्कद किया कराची में। बड़ी बिजलियाँ, कुमकुमें, सजावटें, बहुत हुस्न व जमाल, सब ने सीरत पर तकरीरें की। मुझ पर ज़रा सी दीवानगी तारी हो गई। मैंने कहा, किससे प्यार का ऐलान कर रहे हो? नबी सल्लम से, राइट। वो जिसने सूद को ख़त्म कर दिया और जिसने सूद को अपने खिलाफ और अल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया, इसकी सीरत का तुम जलसा कर रहे हो जबकि तुम इस मुल्क का सबसे बड़ा प्राइवेट सूद खोर इदारा हो। तुम क्या कहना चाहते हो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ु बिल्ला सूद खोर थे? क्या कहना चाहते हो वो लोग जो सूद खोरी करते हैं, इनसे नबी सल्लम नाउज़ु बिल्ला प्यार करते हैं? मैं इस अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि ये सारे कुमकुमें तुम्हारी ये सारी सजावटें, अगर तुम सूद के खिलाफ जिहाद नहीं करते हो तो ये सब बड़ी मुनाफ़क़तें हैं। तुम इस मुल्क के सबसे बड़े मुनाफिक इदारे से ताल्लुक़ रखते हो और अगर इस जगह खड़े होकर सीरत पर तकरीर करते हुए ये बात मैं तुमसे ना कहूँ तो मैं एक बड़ा मुनाफिक इंसान हूँ। सबने वादा किया कि हम सूद के खिलाफ जिहाद करेंगे, मगर इस बात को 5 साल हो गए, सिर्फ उन्होंने ये इख्तियात की कि आइंदा मुझे नहीं बुलाया। बात सच है कि नहीं? आज क्या ये दीन नहीं दिखता? हर बज़ में मेरी धूम नहीं, हर मजलिस में नहीं है। आप देखिए कि ये चीज़ें पढ़कर क्या महसूस होता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि वी आर नॉट लिविंग इन अ मुस्लिम सोसाइटी। हम तो यहाँ चले, बाहर वाले कहते हैं ना कि हम नॉन मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ हम अपनों में भी तन्हा हैं। अपने मुल्कों में जाकर भी यही एहसास होता है और वाकई अजनबियत है, वाकई दुख है, तकलीफ है। मैं तो नहीं खुश रहती। कोई कहते शादी में आए, मैं तो साफ कहती हूँ देखे शादी में खुश होने को जाते हैं, जो कुछ वहाँ है मैं उससे खुश नहीं हूँ तो मुझे माफ़ कर दें, इधर ही खुश रह लें। मैं क्यों जाके पहले जाऊं फिर दुखूं फिर कूड़ों फिर घर आके आपके खिलाफ बातें करूं? तो या वो चीज़ छोड़ दें या मुझे बुलाना छोड़ दें, क्या बुरी बात है? क्या हम अपनों को नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, जरूरत पैदा करें। तो आज रस्मी दीनदारी से ज़्यादा हकीकी दीनदारी की ज़रूरत है और मैं कहती हूँ आज वो दौर है जो दीनदारों को बढ़ाने का दौर है। ये अगर हमारे राहबर और रहनुमा बदल जाएं, इनके अंदर शऊर आ जाए, तो जो पीछे फौज भेड़ बकरियों की तरह इनकी बातें सुनती सुनाती है वो ठीक हो जाए। आज हमने खुद अपने सीधे साधे अवाम को चंद रिवायतें फजीलतें हकीकतें सुनाकर माइल किया है। तुम हमारे गुण गाओ, हमारे चंदे दो, हमारे नाम पे न्याजे दो, बाकी हम सब भुगतेंगे। कौन है जिसने आज 25 साल पिछले में इस मुल्क में बैठकर सूद के खिलाफ बात की? आपको क्या हक है दिन में 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ाने का? देखिए आप कहते हैं ये मुसलमानों के साथ करने की बातें बातें, ये जो हैं वो ये नॉन मुस्लिम के साथ करने की थी। ये तो अब हम अपने जवाल के दौर में है ना, कि अभी तक मुसलमानों को नहीं ठीक कर सके। मुझे आपको नॉन मुस्लिम्स की नंगी टांगों की फिक्र होनी चाहिए थी, मुझे आपको नॉन मुस्लिम्स के इस्लाम की फिक्र होनी चाहिए थी। अभी तक पहुंचे हैं वहां तक? चंद ग्रुप हैं जो दावा कर रहे हैं और वो लोगों को अल्लाह से जोड़ दें और फिर उनके लिए कोई रास्ते खोल दें। आज कोई मुसलमान हो जाए तो जाए किधर? कितने तो तजाद हैं। हमारी तो अपनी जाती जिंदगी में इतना ज्यादा तजाद है। हमारे हमसाए किस इस्लाम की बात करें, चार हमसाए हैं उसके चारों तरफ, चारों चार किस्म का इस्लाम पेश करते हैं। कोई कहता है 11वीं दीन है, कोई कहता है वो शिरक है, कोई कहता है इसको ज़रूरत नहीं, कोई कहता है कर लो कोई बड़ी बात नहीं है। वो गरीब किधर जाए? इस वक्त हम मुसलमानों ने क्योस बर्पा किया हुआ है और याद रखिए कि हम इसकी सजा भुगत रहे हैं। अल्लाह ताला हमें पटक पटक के मार रहा है, सीधे नहीं हम हो रहे बार बार, हमारी होश नहीं काम आ रही, हमारी नमाजें हमारी मस्जिदें हमारे उम्रे हमारे हज हमारी नमाजें हमें बचा ही नहीं रही अल्लाह की पकड़ से। हर कुछ अरसे के बाद तो कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है हमारे सर पे। तो कम से कम जो शऊर आप ले रहे हैं वो तो पक्का लें ना, सबको बदल सके हम खुद को तो बदलें। हम लोगों को तो बताएं कि जो चीज़ हमने पकड़ी है हमारा मौत की तरह इस पे यकीन है। अब इस रास्ते को पकड़ के फिर मौत ही ले जाएगी तो ले जाएगी, हम तो इस रास्ते को नहीं छोड़ सकते। हम कितने सेल्फ सफिशेंट होकर बैठते हैं कि हमें अब जरूरत ही कोई नहीं है, अब हम कुछ और रास्ते ढूंढ लें। तो याद रखिए ये नसीब है, माँ बाप सिर्फ तड़पते हैं, नसीब नहीं देते। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगी लेकिन इल्म नहीं दे सकती जब तक वो बच्चा खुद मेहनत नहीं करेगा। इतनी जरूरत है इस वक्त दर्द के साथ लोगों को दीन की तरफ बुलाने की। मैं कहती हूँ दो हाथ दो टांगे और हो जाएं और इंसान को अल्लाह पर लगा देना तो दुनिया में अल्लाह के दीन को गालिब कर दें। खुशकिस्मत है वो लोग जिनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिले हुए हैं। लोग तो किसी को अंदर नहीं आने देते, आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये अल्लाह का इनाम है, ये अल्लाह का तोहफा है। अगर हमने इस तोहफे की कदर कर ली, आप देखिए कि नाम दुनिया में ना आए, अल्लाह के हाँ नाम लिखे जाएंगे। हर दौर के कोई हीरोज होते हैं, अल्लाह आपको इस दौर का हीरो बना देगा। शर्त एक है कि पहले अपना ईमान पैदा कर। वो कहते हैं ना कि जरा अपने पैकरे खाकी में दम तो पैदा कर। हम चार थपेड़े नहीं हालात के सह सकते हैं, हम लुढ़क के पड़ते हैं मुंह के बल। बच्चा तो दो चार बार गिर के फिर चलना सीख ही लेता है ना, हम तो पहले झटके में गिर जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, बड़ी मजबूरी, बड़ा मुश्किल। भाई अभी भी मुश्किलें आपकी हल नहीं हुई, अभी भी मजबूरियों के दलदल से आप नहीं निकले, तो फिर कभी भी नहीं निकलेंगे। जो अपने दिल में रहेगा वही होगा। ये आखिरी चंद जुमले पढ़ के ये टॉपिक पूरा कर देती हूँ। इतने खुले खुले तजादात शौरी अमल में कभी बर्दाश्त नहीं होते। ये तजाद है ना, सूद जैसी वबा को आप कबूल कर ले। एक नौजवान खूबसूरत औरत टीवी पर तिलावत फरमा रही है। वाह रे वाह, तुमने अच्छी कुरान की हुरमत की है। इस कुरान की जो ये कहता है कि युद्नीन आलई हिन्न मिन जलावी भी हिन, अपने मुंह पर चादर लटका कर घूंघट निकाल लिया करें, सूरत अल साहब की आयत नंबर 59, इसकी तिलावत टीवी पर एक बेपर्दा औरत फरमा रही है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, कोई पूछने वाला नहीं, किसी को एहसास नहीं होता कि कितना बड़ा तजाद हम कर रहे हैं। कराची में सीरत का जलसा हुआ। यह कहते हैं कि मैं सदर नशीन था और एक मोहतरमा को नात पढ़ने के लिए पुकारा गया। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं तो यहां तकरीर नहीं करूंगा, आपको कुछ पता नहीं कि सीरत का जलसा क्या होता है, और जिसकी सीरत का जलसा मुनाकिद कर रहे हो यानी उसको मना रहे हो, इसी के हुक्म की नाफरमानी करते और इसी का मजाक उड़ाते हो, इसी की तारीफ करते हो। इतना बड़ा तजाद तुम कैसे हजम कर जाते हो? यह सब इसलिए कि शौरी अमल नहीं हो रहा। ये हाईलाइट कर लें, दीन शौरी नहीं है। एक सुनी सुनाई डगर पर चले जा रहे हो और बड़े तजाद यानी कॉन्ट्राडिक्शन करते चले जा रहे हो। मुझे खुशी हुई कि इस जलसे में यह अहद किया गया कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। मैंने कहा खवातीन नात ख्वानी करें, कुरान ख्वानी करें, अपने यहाँ खवातीन में बैठकर करें। इस्लाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ इजाज़त दी है कि वो खुले बंदों यूं बेपर्दा होके आ जाएं? पर्दा सिर्फ चेहरे और जिस्म का ही नहीं है, आवाज़ का भी है। मजे की बात है कि इन बेपर्दा खवातीन की तिलावत और नात गोई पे बाज बुजुर्ग वजद में आए हुए थे। मैं पूछता हूँ किस बात पर वजद में आए हो? जरा सा शौरी अमल इख्तियार करोगे तो ये सारा वजद उड़ जाएगा। दीन तदब्बुर तफक्कुर का नाम है, इस अंधे वजद का नाम नहीं जिसमें तुम्हें ये भी पता न चले कि तुम नबी सल्लम के अहकाम का मजाक उड़ा रहे हो। दिल तो आपके भी गवाही दे रहे होंगे ना कि एक एक बात दिल से निकली हुई है। अब ये बंदा खुद समझे कि वो कहाँ पे खड़ा है। आज इतनी जरूरत है, मैं कहती हूँ अब किताबों का इल्म तो बहुत महफूज हो गया, अब लोगों के शऊर को बेदार करने का वक्त है। तकलीफ आई बकरा दे दिया, छतरा दे दिया, खुशी आई कोई बताशे बटा दिए। दीन ये नहीं है। इस वक्त जरूरत है उस दीन को आम करने की जो अल्लाह के नबी सल्लम ने दिया। वो वर्जन आम कीजिए कि जिसके बाद नई चीज दुनिया में ना कोई आए, और फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मुसलमानों की हालत संवरेगी। करें क्या, अब इतना कुछ जो सुन लिया, मेरी क्या जिम्मेदारी है खुद को जमाना? एक खुशबू का आप एक फोहा रख दें ना, एक फूल रख दें कहीं, कम अज कम अपने इर्द गिर्द की जगह को खुशबूदार कर ही देगा ना। एक दिया बन जाए, आप दिया बन जाए, कह दें अल्लाह को अल्लाह मेरे कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई ताकत नहीं, जो कर सकती हूं वही कर रही हूं, मुझे नताइज की भी कोई परवाह नहीं है। दिखा दे तेरी अता है, दुनिया में इस्लाम का गलबा दिखा दे, बाहर दिखा दे मैं खुश हूं, नहीं है बस मुझे ना छुड़वाना। मैं तेरी तरह बुलाती रहूं, तेरे दीन के खादिम बन जाऊं, तेरे कुरान के खादिम बन जाए, ये तड़प रख के दुनिया से गुजर जाए, शायद आपकी तड़प आने वाले लोगों को भी ठीक कर दे। तो यहाँ वक्त पूरा हुआ, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। अपना अपना मुहासबा करते रहें। अगर आपने वाकई रंग लगाने हैं इस सीरीज को पढ़ के, एक और किताब पढ़नी है, तो इंशाल्लाह वो भी कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला हमारी अमल کی کوششوں کو آسان کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين.